نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقت کی قدر کیجئے، یہ میں نہیں کہہ رہی آپ سے، کائنات بول بول کے آپ کو مجھے احساس دلا رہی ہے کہ ہمارے پاس وقت کم ہے اور ہم نے ابھی بہت کچھ کرنا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وقت کی قدر کیجئے مگر کیسے. کتاب کے حساب سے ہم پیج 20 پہ ہیں اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے وقت کی خصوصیات، یعنی کیا خاص چیزیں ہیں وقت کے بارے میں. تو وقت کی کچھ خصوصیات ہیں جن سے واقفیت ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ انہی کی روشنی میں ہم وقت کا صحیح استعمال کر سکیں. پہلی چیز وقت کے بارے میں جس کا میں اور آپ کیا سبھی اقرار کرتے ہیں، اور وہ ہے تیز رفتاری. اکثر لوگ کہتے ہیں وقت بڑی تیزی سے گزر گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا، دس اینڈ دیٹ. تو یہ سارا کچھ ہمیں آپ کو کیا دیتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں اس کو. وقت کی سب سے بڑی خصوصیت تیز رفتاری ہے. یہ بادلوں کی طرح گزر جاتا ہے اور ہوا کی مانے دوڑتا ہے، خواہ وہ مسرت و شادمانی کے لمحات ہوں یا غم و حزن کے اوقات. اگرچہ خوشی کے ایام زیادہ تیزی سے گزرتے ہیں اور غم کے آہستہ آہستہ، یعنی لگتا ہے ایسے غم کے وقت پہ کہ وقت ٹھہر گیا، لیکن دیکھا جائے تو گھڑی کے چلنے کی سپیڈ ایک ہی ہوتی ہے. چاہے خوشی کا وقت ہو یا غم کا وقت ہو، دونوں صورتوں میں گھڑی ایک ہی رفتار سے چلتی ہے اور گزر جاتا ہے سب کچھ وقت کے ساتھ ساتھ. وقت کا احساس ہر انسان کو اپنی کیفیت کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے. یعنی خوشی میں ایسا لگتا ہے جلدی گزر گیا کیونکہ انتظار بہت ہوتا ہے نا، تو ہم کہتے ہیں ہائے اتنی جلدی وقت گزر گیا. اور غم کے لیے چونکہ تیار نہیں ہوتے تو وہ پہاڑ کی طرح سے لمحے بن جاتے ہیں. انسان کی عمر اس دنیا میں جتنی بھی طویل ہو جائے، سوچیں ذرا آپ کیا چاہتی ہیں، کتنا جیئیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا، اور آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ انبیاء کرام کی روح قبض نہیں کی جاتی مگر یہ کہ ان سے پہلے پوچھا جاتا ہے. تو جب ان کی موت کا وقت آیا تو ملک الموت ان کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کی جان لوں. تو موسیٰ نے کہا میں تو بھی نہیں مروں گا، مکہ مار دیا. بخاری کی روایت ہے ملک الموت کی آنکھ پھوڑ دی، وہ روتے ہوئے اللہ کے پاس گئے، اللہ تعالیٰ تیرا بڑا زبردست نبی ہے، جان نہیں دے رہا. کہا جاؤ اس کو بولو کہ ایک بیل لے لو اور اس کے اوپر ہاتھ رکھو، آپ کے ہاتھوں کے نیچے اس کے جتنے بال آ جائیں گے اتنے سال آپ کی زندگی بڑھا دی جائے گی. کہا ٹھیک ہے. ملک الموت واپس گئے، اللہ تعالیٰ کی جو آفر تھی وہ پیش کر دی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد پھر موت ہی ہے. تو کہا اگر اس کے بعد موت ہے تو پھر ابھی صحیح. تو یاد رکھیے کہ زندگی جتنی بھی طویل ہو جائے وہ بہرحال تھوڑی ہے، اس کو ہائی لائٹ کریں. زندگی جتنی بھی طویل ہو جائے وہ بہرحال تھوڑی ہے، اس لیے کہ انجام کار اسے مرنا ہے. اللہ رحم کرے اس شاعر پر جس نے کہا وَإِذَا كَانَ آخِرُ الْعُمْرِ مَوْتًا فَسَوَاءُ قَصِيرُهُ وَالطَّوِيلُ. جب عمر انسانی کا انجام موت ہے تو اس کا مختصر یا طویل ہونا برابر ہے. آپ یہاں ایک ایکٹیویٹی بھی کر سکتے ہیں، میں کر چکی ہوں اپنی نانی کے ساتھ. کسی بڑی عمر کے اپنے خاندان کے گھر کے شخص سے پوچھئے، سنائیے کیا عمر ہے آپ کی، کب سے ہیں. پھر وہ آپ کو شروع سے سنائیں گے، صدر ایوب کے وقت میں اتنی تھی اور پاکستان بنا تو اتنے تھے اور فلاں پہ اتنے تھے. جب وہ خوب لمبی کہانی سنا چکے ہیں تو آپ ان سے پوچھیں واپس جانے کو دل کرتا، تو کہیں نہیں نہیں میں نے ابھی دیکھا ہی کیا ہے، جانے کو دل کسی کا نہیں کرتا. موت کے وقت ہر انسان کو اپنی زندگی کے ماہ و سال انتہائی مختصر معلوم ہوتے ہیں. اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ لمحات تھے جو برق رفتاری سے گزر گئے. برق رفتاری کیا ہے؟ بجلی کی تیزی سے. حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ جب روح قبض کرنے کے لیے موت کا فرشتہ آیا تو اس نے آپ سے پوچھا کہ دنیا کو آپ نے کیسا پایا. سوچیں، اور نہیں پتا یا بھول گئے تو بتا دوں 1000 سال کی عمر ملی تھی. معجزہ تھا یہ بھی، ایک 1000 ایئر، جس میں سے 950 ایئرس، 950 سال اللہ کے دین کی تبلیغ کی. تو پوچھا کیا لگا؟ آپ نے فرمایا اس گھر کی طرح جس کے دو دروازے ہوں، میں ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے سے نکل آیا. حالانکہ نوح علیہ السلام 1000 سال جیے. ये वाक्य सही हो या गलत, मगर इसे साबित शुदा हकीकत की भरपूर अक्कासी होती है कि मौत के वक्त उम्रें मुख्तसर मालूम होती हैं। इसी तरह क़यामत के दिन इंसान को इसके गुजरे हुए औकात थोड़े दिखाए जाएंगे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला फरमाता आयत 46 सूरत नाज़ियात कअन्नहुम यौम यरौनहा लम यलबसू इल्ला अशियतन अव दुहाहा, जिस रोज़ ये लोग क़यामत को देख लेंगे तो इन्हें यूँ महसूस होगा कि ये बस एक दिन के पिछले पहर या अगले पहर तक ठहरे हैं। और एक दूसरी आयत सूरत यूनुस आयत 45 व यौम यख्शुरुहुम कअल्लम यलबसू इल्ला सा'अतम मिनन नहार, और जिस रोज़ अल्लाह इनको इकट्ठा करेगा तो इन्हें यूँ महसूस होगा कि दुनिया की ज़िंदगी में गोया ये महज एक घड़ी भर यतआरफून बैनहुम, आपस में जान पहचान को ठहरे थे, कद खसीर अल्लज़ीन कज़्ज़बू बिलिक़ाए अल्लाह, फिल वाक़े सख्त घाटे में रहे वो लोग जिन्होंने अल्लाह की मुलाकात को झुटलाया, वमा कानू मुहतदीन, और हरगिज़ वो राह रास पर नहीं थे। सोचिए मेरी आपकी ये ज़िंदगी और ये दुनिया जिसके लिए जीते हैं, ये क़यामत के दिन एक पहर लगेगा। यहाँ एक छोटी सी एक्टिविटी करें, घड़ी देखें, 7:37 मुझे दिखा रही है घड़ी। फजर कितने बजे हुई थी आज? 2:30 पे स्टार्टिंग टाइम था, 3 o'clock के करीब, चलें 3 पे लगा लीजिए। 3 o'clock से लेकर अब तक 16 घंटे गुजर गए। आपको क्या लग रहा है आज के दिन के बारे में? अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो आज का दिन गुजर गया और अभी थोड़ा सा बाकी है, कितना लंबा था, तो आप में से अक्सर ये कहेंगे टाइम ही नहीं मिला, इधर आना था, तैयारी करते रहे, जल्दी जल्दी खाना दिया, घर साफ किया, ये किया, वो किया, भाग दौड़ में ही आया ना। कोई आप में से था जो बैठ के घड़ी देख रहा था, हाय जल्दी से 5 बजे तो मैं जाऊँ? नहीं है ना। तो जब एक दिन का नहीं पता चला तो ज़िंदगी का कहाँ पता चलेगा। चलिए दिन तो छोड़ दीजिए, पिछला हफ्ता, आज क्या दिन है? इतवार है। पिछले इतवार को क्या था? ईद थी। क्या लग रहा है कि ईद गुजरे, बहुत अरसा गुजर गया, ऐसे लगता है अभी आज चांद दिखा था। मैं तो हर रमज़ान में कहती हूँ अल्लाह अभी तो पिछला रमज़ान याद है, और रमज़ान शुरू होता है और जब मेरे हस्बैंड एतकाफ़ के लिए जाते हैं तो मुझे पिछला याद आ रहा होता है, हाय अभी तो ये कुछ दिन लग रहे हैं, महीना हो गया होगा, अभी तो उनका पिछला एतकाफ़ तैयारी की थी, ये फिर जा रहे हैं। यानी ज़िंदगी बर्फ़ की तरह पिघल रही है। सारी बात का खुलासा, तो आप मुझे बताइए कि जो चीज़ इतनी तेज़ रफ्तार हो फिर आप उसको रोक भी नहीं सकते, तो फिर उससे फ़ायदा कैसे उठाएंगे? अपनी रफ्तार को तेज़ करें, ये अमल की बात लिखे। घड़ी नहीं रुकेगी, आपको तेज़ चलना पड़ेगा, सुस्त रवि ख़त्म करें। और आप महसूस करेंगे जब अपने ऊपर इसको अपनी आदत के अंदर नोट करेंगे ना, तो हम बहुत सारी चीज़ों में सुस्त होते हैं। और मैं अक्सर सोचती हूँ अगर छत पे कोई कैमरा लगा दे हमें बताए बगैर, और खैर से सुबह बिस्तर से उठने से लेकर दोपहर तक कोई हमारी वीडियो बना ले बगैर दिखाए, कितनी तो अंगड़ाइयाँ होंगी और कितने सुस्त मारे कदम होंगे जो उठते ही हमारे बाथरूम की तरफ जाते हैं, कैसे अदाओं से उठते चलते और फिर अखबार पकड़ और चाय का कप और सोफ़े पे और काउच पे, और आज आगे तो लोग अखबार पकड़ते थे अब फ़ोन पकड़ते हैं, और उसके मैसेज खामोशी से अगर कोई हमारी वीडियो बनाए और जोहर के बाद रिप्ले करे तो मेरा लम शर्मिंदा हो जाए, हम इतने सुस्त रहे हैं। तो अपनी रफ्तार को तेज़ करें, ये भी अपने लिए करें। अगर आप ये कहते हैं ना कि वक्त नहीं मिलता, काम नहीं पूरे होते, तो शायद काम ज़्यादा नहीं है, आपकी स्पीड स्लो है, थोड़ी सी रफ्तार तेज़ कीजिए। और अगर इसको समझ ना सकें तो अगला टॉपिक देखिए कि फिर ये सोच लें क्या गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। ये वक्त की दूसरी बड़ी खसूसियत है, आ सकता वक्त वापस? आज संडे है लेकिन पिछला संडे गया, एक मिनट गया, अब वो गया। यानी हर जाता हुआ वक्त हमें कहकर जाता है अब तो मुझे बुलाओ पुकारो मैं नहीं आऊँगा। किसी भी इंसान के बारे में सोचिए, मैं एक बड़ी यानी उदास करने वाली फीलिंग रख रही हूँ इस वक्त। हम जब छोटे होते थे, कभी होते ही थे ना, कोई फौत होता था ना, तो जो चीज़ वो छोटे से दिल को मज़ीद उदास करती थी कि ये कभी अब वापस नहीं आएगा, अब इस चेहरे को कभी नहीं देखेंगे। उस वक्त इतनी तस्वीरें वीडियोस आम भी नहीं थी, कोई किसी की शनाख्ती कार्ड की तस्वीर कोई छोटी मोटी होनी, तो कहना, हाय अब इनको कभी नहीं देखना। तो आप ज़रा सोचें, आप इस बात को अपने इस गुजरते हुए मिनट के बारे में कहें, ऐ वक्त मैंने तुझे फिर नहीं देखना। क्योंकि घड़ी और कैलेंडर एक दफ़ा बदल जाए फिर पीछे नहीं आते। कभी आपने फ़्लाइट्स बुक कराई होंगी, आपको पता है कि उसमें कैलेंडर डला होता है, कहाँ से शुरू करते हैं वो फ़्लाइट। अगर ऑटोमेटिकली आप कैलेंडर को क्लिक करें ना, तो अब से अगली फ़्लाइट। कैलेंडर के मिसाल है कि आज 2 जुलाई है ना, तो 1 जुलाई नहीं दिखाता कैलेंडर में। फर्स्ट फ्लाइट अगर आप चूज़ कर सकते हैं तो आज के दिन में अगर कोई होगी तो दिखेगी, वरना नहीं। आप पीछे जाए नहीं होगा। कभी आप डेट गलत चूज़ कर लें, वो कहता है सॉरी जी नहीं है, आपकी कोई गड़बड़ है। तो वक्त फिर कभी नहीं दिखेगा। इसको जो करना है उससे कर लीजिए। इंसान की ज़िंदगी का जो दिन, जो वक्त और लम्हा गुजर जाता है, वो दोबारा वापस नहीं आता, और ना इसका कोई बदल ही मुमकिन है। हसन बसरी रहमहुल्ला ने इंतहाई मौसर अंदाज में इसकी ताबीर इस तरह की है, रोज़ाना तलुए फजर के वक्त दिन पुकारता है, ए आदम के बेटो मैं एक नई मखलूक हूँ और तुम्हारे अमल पर गवाह हूँ, तो मुझसे खूब फ़ायदा उठा लो, इसलिए कि मैं जाने के बाद क़यामत तक नहीं लौटूंगा। कभी आपको मुझे ये आवाज़ आई, शायद हम मसरूफ़ बहुत होते हैं और आएगी भी तो हम शायद समझ ही नहीं पाएंगे। तो लिहाजा ये एहसास रखना कि जाने के बाद ये वक्त कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए हम देखते हैं कि शोरा और अदबा, शोरा यानी शायर और अदीब अदबा, बुढ़ापे की उम्र को पहुंचने के बाद दोबारा अय्याम शबाब के लौटने की तमन्ना करते हैं। एक शायर कहता है, अला लैत शबाब यऊद यौमन, ऐ काश जवानी किसी दिन लौट आती, फअखबिरुहु बिमा फ़अलल मुशय्यिब, तो मैं उसको बताता कि बुढ़ापे ने क्या जुल्म ढाया। क्या जुल्म ढाता है बुढ़ापा? सर के बाल सफ़ेद, चेहरे पे झुर्रियाँ, घुटनों में दर्दें, कमर में दर्द, एक कदम भरना भी मुश्किल है। फरफर चलते लोग इधर से बाथरूम में जाने के लिए सोचों में पड़े होते हैं कि उठूं कि ना उठूं, एक ही दफ़ा उठूंगी। बुढ़ापा इतनी ख़तरनाक चीज़ है। एक दूसरा शायर, उम्र के गुजरने, इसके रोज़ो शब के जाने और दोबारा न लौटने की तस्वीर कशी इस तरह करता है, कहते वमल मुर इल्ला राकिबुन ज़हर उम्री ही अला सफ़रिन युफनी ही बिल यौमी व शहर। आदमी अपनी उम्र की पुश्त पर सवार होकर एक ऐसे सफ़र पर अवां दवां है, जो इसे दिन और महीने के ज़रिए फना के घाट उतार रहा है। यबीतु वयुदही कुल्ल यौमिन व लैलतिन बईदन अन दुनिया करीबन इलल क़ब्री। वो रोज़ाना सुबह शाम इस हाल में कर रहा है कि दुनिया से दूर हो रहा है और कब्र से करीब। इस जुमले पे गौर करें, आज 2 जुलाई 2017 7:45 हुए हैं शाम के, हम अपनी मौत से कल इस वक्त की निस्बत 24 घंटे आगे हो गए, करीब हो गए। रोक सकते हैं, अच्छी खुराक, दवाई, डॉक्टर, चेकअप, अपॉइंटमेंट्स, विटामिंस, सप्लीमेंट्स, एनर्जी ड्रिंक्स, क्या आपको मुझे मौत से बचा सकते हैं? तो मेरी आपकी ये कहानी है। तो जिसके पास इतनी गिनी चुनी सी अमाउंट हो ज़िंदगी की, क्या वो सो सो के और खा खा के और बेकारियात में गुजार दे? इसी बुक के एंड पे हम पढ़ेंगे टाइम वेस्टर्स। इस वक्त भी सोचिए, सिर्फ चैनल घुमाने, सिर्फ चीज़ों को इधर से उधर वॉन्डर ब्लाइंडली, सिर्फ इंटरनेट पे इधर से उधर बेकारियात में वक्त गुजारने के लिए मेरे पास वक्त है? देखिए, सफ़र में हो ना तो लिमिटेड होती हैं चीज़ें, हर चीज़ ही लिमिटेड होती है, सफ़र का नाम ही सफ़र है। आखिरी दिन हो सफ़र के और आपको लाले पड़े हुए हैं कि इतने पैसे भी नहीं हैं कि खाना पानी भी इतने दिन का ले सकूं, और आप जाकर उन सारे पैसों से फिल्म देखा है, तो रोएंगे ना। वापसी का टिकट लेने के पैसों से जाकर आप रात को कोई बेहतरीन सा फन शो देखा है, बेवकूफ़ी होगी ना। बाद में कोई किसी को कहे तो क्या कहे? यही आज बहुत सारे लोगों का हाल है। पहले महफूज कर लें आखिरत के लिए, वहाँ का तैयारी कर ले, फिर जो बच जाएगा उसको इंशाल्लाह इस दुनिया पे भी सर्व करेंगे। हमारा हाल क्या है, अल्लाह की पनाह, इस दुनिया की ज़रूरतें ही नहीं पूरी हो पाती हमसे, और आखिरत की ज़रूरतों पे हम अपने आप को मजबूर समझते हैं। तो हमेशा पहले आखिरत के लिए लगाइए, फिर दुनिया के लिए इंशाल्लाह जो भी होगा खुले दिल से लगाएं। तीसरी चीज़ वक्त के लिए, पहली क्या थी? तेज़ रफ्तारी। दूसरी क्या है? गया वक्त वापस नहीं आता। तीसरी चीज़, वक्त इंसान की सबसे कीमती मता है। मानते? आप सोचिए ज़रा, आपके पास क्या क्या कीमती चीज़ें हैं? आजकल तो सबसे कीमती चीज़ हाथ में ही होती है, फ़ोन। मैंने एक बच्ची के हाथ में बिल्कुल ब्रांड न्यू फ़ोन देखा, ऐसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। मैंने कहा कि नया लिया आपने? कहती जी, पहले नहीं देखा, फिर जब देखा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये नया डब्बा भी था उसका भी। मैंने कहा ये कितने का है? पता नहीं उसने कितने बताए, 600 कुछ यूरोज़ या 700। तो मैं अपने दिल से सोचने लगी कि इस 700 यूरो की चीज़ का इस्तेमाल क्या होना है। बिल्कुल एक आम बच्ची जो अभी तक कुरान से भी नहीं जुड़ी, और मैं 24 घंटे तो नहीं किसी को भी देख सकता, लेकिन जब भी मैंने उसको देखा उसमें से 80% उसके हाथ में वो फ़ोन होता है, ऑक्सीजन मास्क की तरह। पता नहीं बाथरूम में भी जाता साथ के नहीं। लेकिन 700 यूरो एक अनमैरिड बच्ची ने, जिसको ज़रूरत भी नहीं है फ़ोन की, माँ ने दिया ना, बाप ने दिया, ईदी जोड़ी क्या किया, लेकिन 700 यूरो लगे? आप ज़रा इस 700 यूरो को लगाइए ज़रा किसी और काम पे, है ही नहीं। दीन के नाम पे कैसे दिल घुट जाता है? ये शैतान का एक धोखा है। मैंने अभी एक आज सुबह किस्सा पढ़ा, तो उसमें खुलासा उसका कुछ ऐसे था कि एक शख्स कहीं से गुजरा तो देखा एक बुज़ुर्ग सा बैठा हुआ है, तो रस्सियाँ लेकर उसके फंदे बना रहा है, कुछ मोटी रस्सियाँ, कुछ पतली रस्सियाँ, कुछ डिफरेंट टाइप की। तो ये पास खड़ा हो गया, कहने लगा ये तुम क्या कर रहे हो? कहने लगा रस्सी के फंदे बना रहा हूँ। का हो कौन, करोगे क्या? कहा मैं शैतान हूँ। तो कहा इन फंदों से क्या करोगे? कहा मैं इन फंदों से आदम के बच्चों को फांसूंगा। कहा कुछ मोटे हैं कुछ पतले हैं? कहा हाँ, किसी को फांसना बड़ा आसान है, उसको पतली रस्सियों में डाल लूँगा, और कुछ को मोटी रस्सी में बांधूंगा। कहा ये बताओ कि तुमने कोई दीन वालों के लिए भी कोई रस्सियाँ, दीन के नाम पे भी कुछ फंदे हैं? कहा ये मोटी रस्सियाँ उसी नाम पे। यानी दीन के नाम पर शैतान को, बंदे को फांसना, अल्लाह हू अकबर कबीरा, उसका अटमोस्ट गोल है। तो अपने आप से पूछते हैं कि मेरा माल, मेरा वक्त दुनिया पे खुशी से लगता है या दीन पे? कुछ चीज़ें तो सिर्फ हमारे शौक की नज़र हो जाती हैं, और कहीं हमारी ज़रूरत भी पीछे पड़ जाती है। एक बच्ची थी तो उसने कुरान पढ़ लिया, फिर उसने कहा मैंने अपनी शादी सादगी से करनी है, मुझे बाहरी खाने नहीं खिलाने। घर वालों ने इशू बना दिया, इज्जत का सवाल है, बेइज्जती का सवाल है, लोग कहेंगे कोई गड़बड़ है जो बेटी की शादी पे हमें नहीं बुलाया। नहीं, उसने कहा सबको बुलाएं, हॉल नहीं बुक कराना। कहा नहीं, हमारी इज्जत का मसला। नहीं समझ रहे? यानी 2-3-4 हज़ार यूरो सिर्फ 2 घंटे में लोगों को खिलाना है, क्योंकि ये नॉर्म है, इट्स कॉमन, कि बेटी की शादी पे एक दावत तो खिलानी है ना। और मैंने कम ही लोगों को शादी हालों से खुश खुश जाते देखा है, वो बातें ही करते जाते हैं, और कुछ ना करें ये कहेंगे इतना कुछ पकाने की ज़रूरत क्या थी, पेट ख़राब हो गया। तो याद रखिए कि जिस चीज़ को आप अहम समझते हैं ना, उस पे आप वक्त भी लगाते हैं और माल भी लगाते हैं। चीज़ की कीमत नहीं होती, आप उसको क्या समझते हैं ये कीमत होती है। चलिए इसको पढ़ के देखते हैं कि वक्त इंसान की सबसे कीमती मता कैसे। चूंकि वक्त बर्क रफ्तार होता है, और गुजरा हुआ वक्त कभी फिर वापस नहीं आता, और न इसका कोई बदल होता है, इसलिए ये इंसान की सबसे नफीस और कीमती मता है। और इसकी नफासत और कदरों कीमत का अंदाज़ा इस बात से होता है कि हर अमल और नतीजे के लिए वक्त दरकार है। इसको हाईलाइट करें, हर अमल और नतीजे के लिए वक्त दरकार है। बल्कि इनफरादी और इज्तमाई दोनों हैसियत में इंसान का हकीकी सरमाया वक्त ही तो है। समझ आइए बात? आपके मेरे हर अमल का नतीजा ज़रूर निकलना है। जैसे आप खाने में जो भी डालेंगे ना, उसका टेस्ट आना ज़रूर है। कड़वा मीठा नमकीन कुछ भी, मीठे में नमकीन डाल देंगे नमक का टेस्ट आ जाएगा, नमकीन में मीठा डाल देंगे टेस्ट आएगा। इसी तरह मैं और आप अपनी ज़िंदगी में जो अमल कर रहे हैं उसका नतीजा ज़रूर निकलना है। खौफ नहीं आ रहा सोच के, गाफिल कोई कैसे जिए? वक्त सिर्फ सोना ही नहीं, जैसा कि मिसल मारूफ है, ये सोना कौन सा है? गोल्ड, हम कहते हैं ना वो टाइम इज़ गोल्ड, नहीं बल्कि अमरे वाक्य ये है कि वो सोना चांदी हीरे और जवाहर हर चीज़ से ज़्यादा कीमती है। वजह क्या है? सोने का रेट कम ज़्यादा होता रहता है, बिक जाए वापस आ जाता है, कभी बेच दिया फिर खरीद भी लेते हैं दोबारा। क्या वक्त को वापस ला सकते हैं? बस इसी से ही देख लीजिए कि जो प्रीशियस है, जो कभी वापस नहीं आना, फिर आप और मैं उसके बगैर कैसे जी सकते हैं? हसनुल बना शहीद के बकौल वक्त ही ज़िंदगी है, और हकीकत भी यही है कि इंसान की ज़िंदगी इस वक्त से ही इबारत है जिसे वो पैदाइश की पहली घड़ी से लेकर आखिरी सांस तक गुजारता है। नहीं समझे? टाइम इज़ लाइफ। बच्चा पैदा हुआ, उसका टाइमर चल गया, टिक टिक करती घड़ी एंड पे कहाँ रुकेगी, जहाँ उसकी आखिरी हिचकी होगी। तो जब टाइम इज़ लाइफ और लाइफ इज़ टाइम, तो फिर टाइम कितना प्रेशियस है। जिसने वक्त ज़ाया किया उसने ज़िंदगी ज़ाया कर दी। हसन बसरी रहमहुल्ला फरमाते हैं, ए आदम के बेटे, तू मजमूए अय्याम है, यानी दिनों का मजमूआ है, जब एक दिन गुजर गया तो गोया तेरी ज़िंदगी का कोई हिस्सा गुजर गया। चले लिखें अपनी अपनी उम्र कितनी गुजर गई है, पता नहीं पीछे कितना है। चले आज सोचते हैं बैठ के थोड़ा सा, इधर अपने साल भी गिन लें, महीने भी गिन लें, दिन भी गिन लें, टाइम भी गिन लीजिए, ये तो गिन सकते हैं। कई आपके प्यारों ने भी आपका पैदाइश का दिन गिना होगा, आपको सालगिरह की विश करते होंगे, ये किसको पता है कि पीछे कितना है, शायद बहुत करीब हो। सोचिए ज़रा, पिछले रमज़ान में कौन था जो इस साल नहीं था, पिछली ईद पे कौन था और इस ईद पे नहीं है, इसी तरह शायद अगले रमज़ान में हम नहीं होंगे। रमज़ान किसने देखा, अभी तो बीच में इतने महीने हैं, हमें ये नहीं पता कि कल भी हम होंगे कि नहीं। और इतनी अचानक मौतें होती हैं, इतनी अचानक, एक उछू लगता है और बंदा हेयर और देयर। सिर्फ आपकी ज़िंदगी और आपकी मौत के बीच में एक हिचकी है। इस सिलसिले में कुरान दो मौक़ों पर इंसान की हसरत और नदामत का जिक्र करता है, जब वो अपने ज़ियाए वक्त पर पछताएगा, यानी वक्त को ज़ाया करने पे। इस वक्त का पछताना काम नहीं आएगा। ये कौन से वक्त होंगे? पहला वक्त मौत के वक्त, जब इंसान दुनिया को छोड़कर आखिरत की तरफ रवाना होता है। इस वक्त तमन्ना करता है कि काश इसे थोड़ी सी मोहलत दे दी जाती और थोड़ी मुद्दत के लिए मौत टाल दी जाती, तो वो अपनी बिगड़ी बना लेता और तलाफ़ी माफात कर लेता। माफात क्या? जो गुजर गया, फौत हो गया, जो पीछे था, यानी अपनी कमियों को पूरा कर लेता। ऐसे लोगों का जिक्र सूरत मुनाफिकून आयत 9 से 10 में अपने ऊपर लेकर सोचते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़ौलाइका हुमुल ख़ासिरून वन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदुकुमुल मौत फ़यक़ूलु रब्बी लौला अख़्खरतनी इला अजलिन क़रीब फ़सद्दक़ वकुम मिनस सालिहीन। ए लोगो, जो ईमान लाए हो, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादे तुमको अल्लाह की याद से गाफिल न कर दें। जो लोग ऐसा करेंगे वही खसारे में रहने वाले हैं। जो रिस्क हमने तुमको दिया है इसमें से खर्च करो। इस पे गौर करें, जो हमने दिया है, ये जो हम सोचते हैं ना ये मेरा है, नहीं, हमने तुमको दिया। इससे कबल किसी की मौत का वक्त आ जाए और उस वक्त वो कहे कि मेरे रब, क्यों ना तूने मुझे थोड़ी सी मोहलत दी। नोट कीजिएगा, अजलिन करीब, सालों और महीनों की ज़िंदगी नहीं मांगता मरने वाला, अजल थोड़ा सा, करीब और भी थोड़ी, चंद घंटे। क्यों? वजह दो ख्वाहिशें हैं। फसद्दका, माल बड़ा जमा था, सेंत सेंत के रखा था, जाऊं जरा सदका करो, इतनी मोहलत दे दो कि जाके बस सदके में डाल के आ जाऊं। اور دوسرا واکم من الصالحین، اور میں صالح لوگوں میں ہو جاتا. یعنی بہت سارے ارادے تھے نیکیوں کے لیکن ابھی پوسٹ پونڈ تھے. ہدایت لوں گی ذرا ابھی نہیں، ذرا شادی کے بعد، چلو بچوں کی شادی کے بعد، اچھا بھائی کی شادی کے بعد، مجھے کیا پتہ موت کے فرشتے نے ابھی آ جانا. اس فضول تمنا کا قطعی جواب یہ ہے. اب سوال تو اچھا تھا، جواب سن لیجئے. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ کسی شخص کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا جب کہ اس کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اپنے اوپر سوچیں، ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملے گی، اب کیا فائدہ. کسی نے ایک بڑی اچھی کوٹیشن بھیجی، جب آپ کی وراثت بٹے گی اس وقت آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں آپ کے لیے ایک پینی بھی نہیں ہے. یعنی وراثت میں کس کو حصہ نہیں ملتا؟ آپ کو نہیں ملتا، باقیوں کو تو ملے گا. اس دن کوئی نہیں کہے گا کہ یہ مرنے والے کا حق ہے، اس کو دے دو. دوسرا موقع آخرت میں جب سب کا پورا پورا حساب چکا دیا جائے گا، ہر آدمی کو اپنی کمائی کا بھرپور بدلہ مل جائے گا، جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. اس وقت اہل جہنم تمنا کریں گے کہ کاش ایک بار پھر دنیا میں بھیج دیے جائیں تاکہ نئے سرے سے عمل صالح کا آغاز کریں. مگر افسوس کہ ان کی یہ خواہش پوری نہ ہوگی، اس لیے کہ عمل کا زمانہ ختم ہو گیا اور جزا و سزا کا وقت آ گیا. ایسے لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں کیا، سورت فاتر آئے 37-37، والذین کفروا لہم نار جہنم، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابہا، نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی. کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو. وہم یسترخون فیہا، اس کو امیجن کریں، وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال. کس میں سے؟ جہنم میں سے. نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، تاکہ ہم نیک عمل کریں ان اعمال سے مختلف جو ہم پہلے کرتے رہے. زندگی بھر برے تھے، اب اچھے کریں گے. اللہ تعالیٰ کا جواب سن لیجئے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. تو ان کو جواب دیا جائے گا، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا، اور تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہ آیا تھا؟ یعنی تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آ گیا. فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب مزہ چکھو، ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے. تو اس جھنجھوڑ دینے والے سوال سے ان کی ساری آرزوئیں خاک میں مل جائیں گی. اور یہ جو جملہ ہے نا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑھاپا تھا، کوئی کہتا ہے سر کے سفید بال تھے، اور کہتے ہیں کہ 60 سال کی عمر جس کو ملی اس کا کوئی عذر نہیں چلے گا. تو کیا پتہ چلا کہ ایک اپوائنٹڈ ٹائم لے کر ہم آئے ہیں. اللہ تعالیٰ جس سے جو کام لینا چاہتا ہے اسی کے مطابق اسے عمر اور وسائل بھی عطا کرتا ہے اور تذکیر بھی کرتا ہے. اس کے باوجود اگر کوئی اس کام میں غفلت کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ سخت گرفت کرتا ہے، اور کسی قسم کا عذر اس کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا، خاص طور پر جس نے 60 سال عمر پائی ہو. اس لیے کہ عمر کا اتنا بڑا حصہ غافل کو ہوشیار ہونے اور بھٹکے ہوئے کو اللہ کی طرف پلٹنے اور گناہگار کو توبہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کافی ہے. صحیح روایت ہے، اعذر اللہ الی المرئی اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنہ، اللہ تعالیٰ جس کو 60 سال مہلت دیتا ہے اس کے عذر قبول نہیں کرتا. کیا عذر؟ قرآن سیکھا تھا، وقت نہیں ملا، क्यों भाई, क्या करते रहे? बस वो बचपन जवानी, फिर ऐसे, फिर बच्चे, वह ये वो हुआ। कितनी उम्र जी हो? बस 60 से कुछ ऊपर। अच्छा, 60 साल? तुम्हारा उजर नहीं चलेगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, नहीं उजर नहीं चलेगा, 60 साल में इतना वक्त नहीं मिला कि तुम मेरी बात को समझते। आज हम में से कितने लोग हैं 30 से तो ऊपर है ना? इल्ला माशाल्लाह, 30 आया तो आध हो गया ना, और जब चीज़ ढलती है तो पता नहीं चलता। वो कहते हैं ना कि जवानी आ जाए लेकिन बुढ़ापा आके ना जाए। तो आप और मैं खुद अपने लिए सोचें, तो ये तीन नुक्ते हैं वक्त के लिए। नंबर एक, तेज़ रफ्तारी से गुजर रहा। मैंने आपने क्या करना है, इसका खुलासा लिख लें इधर। अपने आप को चुस्त करना है, सुस्तियाँ छोड़िए। और चुस्ती क्या चीज़ लेके आती है? मकसद। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। वो कहते हैं कि वक्ते फुर्सत कहाँ अभी काम बाकी है, दुनिया में नूरे तौहीद का इतमाम अभी बाकी है। अभी तो शिर्क नहीं ख़त्म हुआ दुनिया से, बाकी कामों की क्या बुराई करें? दुनिया कहाँ गैर फितरी कामों पे लेके जा रही है आपको, मुझे खौफ नहीं आता सोच के? कैसे अल्लाह के कवानीन, जो मुसलमा कवानीन थे, आज उनको तोड़ तोड़ के लोग खुशियाँ मनाते हैं। आपके हमारे इर्द गिर्द कई कवानीन टूट रहे हैं। मैं तो फिक्र में पड़ गई हूँ कि अगली उन नस्लों का बनना क्या है। लोग पहले पूछेंगे शादी लड़के से हुई है कि लड़की से। आपकी आंखों के सामने ये सब अप्रूव हो रहा है और हम खामोश गवाह हैं। ये किसकी सज़ा है, ये किसकी गफलत है? ये उम्मत मुस्लिमा की गफलत की सज़ा है जो सारी इंसानियत को मिल रही है। पूरे यकीन से कहूँगी, अल्लाह ने हमें सफाई का काम दिया था, हमने सफाई छोड़ दी तो गंदगी फैल गई दुनिया में। सोचो मैं गंदगी, अल्लाह ताला हमें अपना काम करने वाला बना दे। दूसरी चीज़ क्या पढ़ा? कि वक्त वापस नहीं आता। खाइए खुराक, जवानी वापस आती है। करिए कोशिशें, बचपन वापस आता है, तो जो है उसको पकड़ लें। और तीसरी चीज़, वक्त सबसे कीमती चीज़ है। आप देखिए, जब कोई आपका प्यारा दुनिया से गया होगा, सोचें किसी को, मेरी भी आंखों में बहुत सारे हैं अपने, बास के बच्चे छोटे थे लेकिन चले गए ना, शादी नहीं बच्चों की चले गए ना, जवान बीवी का क्या बनेगा, चले गए ना, घर अभी पूरा नहीं बना, चले गए ना, क्या ख़त्म हुआ उनका? वक्त ख़त्म हुआ। और सबसे बढ़ के कहें कि मेरा तो अभी मौजूद है, यानी मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे अल्लाह ने मुझे एक नई ज़िंदगी दे दी है। कि अल्लाह तेरा शुक्र है, फुलां 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 तो चला गया पर मैं अभी ज़िंदा हूँ। तो अपनी ज़िंदगी से फ़ायदा उठाना है इंशाल्लाह। क्या आपको ये सब पढ़ते वक्त ये एहसास हुआ कि मेरे पास वक्त कम है? और अगर ये एहसास आ जाए तो यकीनन चेंज आएगी। जब कभी किसी बेकार चीज़ में मशगूल होना तो फ़ौरन इन बातों को याद करें। वो किसी बुज़ुर्ग के बारे में कहते हैं, उनको किसी ने कहा कि आओ बातें करें, तो कहा पहले सूरज को रोको, अगर वो रुक जाता है तो मैं तुम्हारे से बातें कर लेता हूँ, वरना मेरे पास वक्त नहीं है। कि सूरज तो चल पड़ा तो मैं बातें करने में वक्त ज़ाया कर दूँ। और हम कितना बेकार वक्त ज़ाया करते हैं, तबसरे, चुगलियाँ, गीबतें, नजवा, डिस्कशंस, यानी दुनिया में मेरे सिवा सब गुनाहगार। नीयतों पे शक, इरादों पे शक, अंदर कुछ है बाहर कुछ है, यानी गोया कि हमें अल्लाह ने पोस्टमार्टम करने के लिए भेजा है दुनिया में इंसानों का। बुरों को तो छोड़ें, हम तो नेक काम करने वालों को नहीं छोड़ते, ये नसीब है हमारा। ये बदबख्ती है कि इस उम्र से कल जाके अल्लाह से ये कहेंगे, अल्लाह के का कितने नेक बने। नहीं, अल्लाह वो नेकियां करने वालों को अंदर से परखते रहे। हम कौन कैसा कैसा नहीं, आप देखिए कभी लोग कितना कीचड़ उछालते हैं ना नेकी करने वालों पे भी। और लफ्ज़ मौलवी तो गाली बना ही दी हमने, दीनदारों का तो लफ्ज़ दीनदार होना ही हो दूसरों के चेहरों पे स्माइल लाने के लिए काफ़ी है। क्या मैं अपना वक्त इन चीज़ों में ज़ाया करूँगी? मेरे पास तो वक्त ही पहले बड़ा कम है। तो अपनी ज़िंदगी से ये सब बेकार याद निकालें, 1 सेकंड से ज़्यादा किसी चीज़ को ना सोचें। दिल में ख्याल आए ना, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क्योंकि शैतान आपके सीने के इर्द गिर्द घूमता है, इसीलिए कहा कि फी सुदूर इन्नास, दिल में तब जाता है जब आपका दिल गाफिल होता है। तो इसको जिक्र से तर रखें, अल्लाह ताला आपके लिए मेरे लिए आसान करें।